हमारी गुफ्तगु मेरा ख्याल है मतलब उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे और गुफ्तगु हमारी जिस तरह चल रही है तो मेरा ख्याल है कि आगे जो तीन चार नशस्तें हमारे साथ में हैं उनमें इंशाल्लाह इसी मौजू को ही अच्छे तरीके से बोलने और समझने की कोशिश करेंगे। और वो मौजू क्या है कि पहले हमने अपने खिदमत में अर्ज किया था तौहीद के हवाले से, तौहीद के मरातब को तय करना ही इंसान की ज़िंदगी का असल मकसद है। जिस इंसान का फैक्ट में तौहीद इल्म और अमल दोनों एतबार से जितना बलंद है वही इंसान की ज़िंदगी में अलग रहेगा, यानी इंसान के दर्जा का तायुन उसकी तौहीद है। तौहीद यानी असल ज़िंदगी, ज़िंदगी की असल हकीकत, जितना इंसान उसको जानता है उसको पहचानता है और उसके ज़िंदगी के अमल इल्म में मार्फत में अमल में जितना उसका दखल और असर पाया जाता है उतने ही इंसान का मकाम और मियाद इस ज़िंदगी में ऊंचा है। फिर हमने ये बात की है हमारा जहन अगर तौहीद के हवाले से जाता है तो तौहीद में तरक्की बंदगी के ज़रिए से होती है, लेकिन हम शायद इतना ज़्यादा अगर जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जौहर बंदगी या सिफत बंदगी तो उसका शायद फौरी तौर से समझ लेना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम अब्दियत को बाद में समझते हैं या और कर सकते हैं इबादत को पहले समझते हैं। कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कन्फर्म नहीं किया कि तकरीबन जितनी आयतें कुरान करीम की जिसमें अब्द का जिक्र है उसमें हर एक में आपके जहन में इबादत है, यानी आपके जहन में उन तमाम जगहों का तर्जुमा जो है कि हम तेरी इबादत करते हैं या इंसान को इबादत के लिए कर दिया अलग ऐसा नहीं, क्योंकि इबादत एक फेल है और फेल कुछ चीज़ों पर यानी उसका नतीजा कुछ चीज़ों पर होने से होता है। कोई भी काम जैसे मैंने आपके सामने कल कुरान करीम की आयत पढ़ी सूरह फाउन की कि कुरान कुछ नमाजियों को जहन्नम की खबर भी दे रहा है, तो अगर सिर्फ इबादत का फेल अंजाम देना काबिल तारीफ होता तो ऐसे कैसे होता था, यानी जाहिरी एतबार से फेल इबादत का अंजाम देना अगर हदफ होता जिंदगी का तो फिर ऐसा कैसे होता कि बास बंदगी करने के लिए बास इबादत करने वाले जहन्नम में जा रहे और इबादत करने वालों के दरमियान तफावत फर्श का अर्श। हम ये भी देख रहे हैं कि वो शख्स जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगाता है वो भी वहाँ खड़ा होकर नमाज पढ़ने हैं, वो अफराद के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शरीक करने के लिए मैदान का बदला में जाना हुए थे वो भी नमाज पढ़ रहे, और इब्न ज़ियाद या किसकी मांग नफी रोज़ा माना था आशू है ना कि अगर मेरे बेटे को फला हासिल हो गई तो रोज़ा बताइए इबादत क्यों चल रही। तो अगर इबादत फिर इबादत की कोई हैसियत होती इबादत का काम अंजाम होने की कोई हैसियत होती तो इबादत की यही शक्ल सामने आती, तो इसी से हमें ये बात पता चलती है कि असल शय इबादत का अमल नहीं है बल्कि असल शय इबादत के जरिए से हासिल होने वाली बंदगी की सिफात है। वो जब तक हासिल नहीं हो आप जितनी देर जाए इबादतें अंजाम देते हैं समझना जरूरी है कि जो कुछ हमारी नजरों के सामने है वो हदफ और हकीकत नहीं और जो जिंदगी के लिए हदफ और हकीकत है वो हमारी नजरों से पोशीदा है। और उसकी दलील जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि कुरान करीम की पहली आयत युमिनूना बिलगैब खुद इसी चीज की तरफ इशारा करती है, यानी कुरान करीम में कहीं भी आपको यह नहीं मिलेगा कि युमिनूना बिलज़ाहिर, युमिनूना बिलगैब के लफ्ज गैब जो है ये बज़ात खुद इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस पर ईमान लाया जाना चाहिए जो उमूर इस काबिल हैं या जो हकायक इस काबिल हैं कि उन पर ईमान लाया जाए वो नजरों के सामने जाएंगे। युमिनून अब गैब का मतलब यह है, मैं गैब के माने आपको समझाता हूँ, गैब का मतलब क्या है, गैब का मतलब यह है कि ऐसी शय कि जो हवास के जरिए से, सेंसेस के जरिए से काबिले इदराक नहीं है, यानी जिनको मेरे और आपके मटेरियल सेंसेस महसूस नहीं कर सकते। इस जगह पर आजादी हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि चाहे वो हवा सादा हो या मुसल्ला, यानी कि सादा हवास यहाँ और यह आप मुसल्ला कैसे हो जाएगी जब आप उसके आगे दूरबीन या पोर्टबीन लगा दिए, यानी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो यहाँ मुसल्ला हो जाएगी। तो जाहिर है कि अभी हमें उतने सितारे से जल या जरा में फर्क नहीं दिख रहे इस आँख से, सादा आँख से, कि जो टेलीस्कोप से देखेंगे। अगर मिसाल के तौर पर आप एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप अपनी आंखों के सामने रख लेंगे तो आपको अपने हाथ पर पानी का पता नहीं क्या कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जिसे कहा है कुरान ने युमिनून बिलगैब, वो गैब ना सादा आंख से नजर आएगा ना मुसल्ला आंख से नजर आएगा, ये एक बारीक होता है। यानी इसकी भी मिसाल आपको दूं कि जैसे मिसाल के तौर पर रेडियो टीवी के सिग्नल्स इस वक्त भी फजा में मौजूद है, हमें नहीं महसूस हो रहा, हमारे पास कोई ऐसा आला या सेंसर नहीं है कि जो उनको महसूस कर सके, लेकिन अगर आप प्रॉपर डिवाइस ला कर रखें, रेडियो या टीवी रखें, तो वो उसको कैच करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी इस जिंदगी में भी, इस आलम जाहिर में भी कई चीजें ऐसी हैं जो गायब हैं, लेकिन अगर आप अपने सेंसर्स को एड प्रोवाइड करें या कोई स्पेशल सेंसर्स यूज करें तो आप उन गायब चीजों को हाजिर कर सकते हैं। अरे बात समझ, यानी जैसे हमें नहीं पता, मेरे लिए गैब है कि मिसाल के तौर पर इस वक्त फला मुल्क के फला जगह में क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर आपने टीवी कैमरे लगाए और सैटेलाइट के जरिए से उन रेस को इधर भेज दिया, वो गैब में चले जाए। तो क्या युमिनून बिलगैब में ऐसे किसी रंग का जिक्र है कि जो अभी तो हमें आंखों से नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या हम कोई स्पेशल डिवाइसेस यूज करें या सेंसर्स लगा दें या कोई ऐसे काम करें तो हमें खुदा नजर आना शुरू हो जाए, फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाए? नहीं, नहीं। बल्कि यहां पर युमिनून बिलगैब से मतलब यह है कि जो चीज हकीकत है, जिस पर ईमान लाना जरूरी है, वो वजूदी एतबार से एक दर्जा होता है, वजूदी एतबार से। यानी गैर ऐसा नहीं कि मेरे पीछे, मेरे लिए दीवार के पीछे छुपी हुई चीज गायब है, ये दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है यह गायब है, ये नहीं, ये वाला गायब नहीं। बल्कि मैंने आपके सामने इसीलिए बार बार वो तस्वीरें बना के दिखाई कि वजूद के दर्जा कि हम एक दर्जे पर जिंदा है, एक आलम इससे ऊपर है। जो आलम इससे ऊपर है उसका नाम क्या रखा है खुदा ने? मलकूत या आखरत। और जिस जगह पर हम इस वक्त जिंदा है उसका नाम क्या है? दुनिया या मुल्क। ये सारे लफ्ज कुरान करीम में है। तो हमारे लिए आलम मुल्क में हकीकत क्या है? जो कुछ आलम मलकूत में है, और वो इस वक्त हमारे लिए गैर है। यानी अगर कोई इंसान आलम मलकूत में चला जाए तो फरिश्ते उसकी नजरों के सामने हाजिर हो जाएंगे, रसूलों की किताबों की हकीकत उसको नजर आएगी, नूर खुदा की शिद्दत हकीकत उसको नजर आएगी। देखिए यही सब चीजें हमारे लिए भी गैब, लेकिन यह गैब कब जाहिर होगा कि जब हम वजूदी एतबार से एक दर्जा बुलंद हो जाए। ठीक है, इस बात को समझ में आएगी। ऐसा गैब नहीं कि हम इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के डिवाइसेज और इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल करें तो बहुत सारी चीजें जो गायब है वो जाहिर हो जाती है, लेकिन ये युमिनून बिलगैब में से कोई चीज इस आलम मादियत में रहते हुए जाहिर नहीं होगी जब तक कि हम इससे एक लेवल अप ना हो। अब सवाल यह आया हमारे सामने, ये पैदा हुआ कि अगर गैब की नौयत ये है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, दूरबीन लगा लें, दूरबीन लगा लें, आलात लगा लें, लेकिन खुदा और मलाइका नजर नहीं आने वाले, वही की हकीकत नजर नहीं आने वाली, तो फिर अगर ऐसा गैब है तो इस पर ईमान लाने की फरमाइश नहीं होगी। और ये इंसान के लिए कैसे मुमकिन हो कि एक चीज जो हतमा गायब है और किसी सूरत से जाहिर होने वाली नहीं है, तो क्यों कर और कैसे उस पर ईमान लाया? इसके जवाब में एक बात ये कही जा सकती है कि इब्तिदा में अगर आप देखें कलाम पैराग्राम को, जब पहली वही नाजिल हुई और आपने लोगों को मुतवज्जे किया, आवाम को, एक तो दावत बशीरा की और एक आवाम को, अपने लोगों को, तमाम लोगों को मुतवज्जे किया, तो शायद वो है अबू कुवैस का पहाड़ जिस पर आप बलंद में लोग नीचे खड़े थे, और आपने लोगों से कहा कि अरे लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो तुम पर हमला करने के लिए तैयार है, तो क्या मेरी बात मान लोगे? तो लोगों ने कहा बिल्कुल मानेंगे, इसलिए कि हमने सारी जिंदगी में आपको सामने पर नहीं पाया है। तो आपने फरमाया कि अच्छा, फिर अगर तुम मुझ पर इस दर्जा एतमाद करते हो तो ये सुन लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह हो चलेगा। सिर्फ ये एक पैराडॉक्स कि बुनियादी तौर पर, जैसे कल मैं एक बात कह रहा था कि युग्मनून बिल गैब के लिए पहली सीढ़ी है वो एतमाद है हुज्जत खुदा, यानी उस शख्स पर कि जो गैब का हाल जानता है और उसका किरदार इस काबिल है कि उस पर आप 100% एतमाद कर सकें, वो आपके लिए पहली सीढ़ी है युग्मनून बिल गैब। ठीक है, ये बात तय शुदा। दूसरी बात यह कि हमारे अपनी अकल में या हमारी अपनी सोच में कुछ ना कुछ उसका एहसास मौजूद होना जरूरी है। ये बात मैं अक्सर कर चुका हूँ कि वो सारे के सारे लोग पैगंबर को, सादे को अमीन मानकर एक लश्कर की मौजूदगी पर ईमान लाने को तैयार थे, लेकिन पैगंबर की बात सुनकर खुदा पर ईमान लाने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं? इसलिए कि उनके जहनों में, उनकी फिक्रों में बुत परस्ती बैठी है। किस वजह से? इसके बरक्स वो अफरा सलमान और अबूजर जैसे कि जिनके जहनों में पहले से ही तौहीद का शऊर मौजूद था, वो एक ऐसे शख्स की तलाश में घूम रहे थे। वो जो थे सलमान, ईरान से निकल के पता नहीं कहां कहां का सफर तय कर रहे थे कि मुझे कोई शख्स मिल जाए जो मेरी इस बेचैनी को दूर करे, कि मैं जरदुश्त के मजहब को सही नहीं समझ पाता, मैं ये पादरियों इस मजहब को सही नहीं समझ पाता है, क्या नहीं करते, वो इस तलाश में घूम रहे थे। अबूजर बेचैन, इन लोगों को एक लम्हा भी सर्फ नहीं कर, जब ये पैगंबर की खिदमत में हाजिर हुए हैं, चाहे अम्मार हो या मिर्ज़ा हो या अबूजर या सलमान या इस किस्म के अफराद, एक लम्हा भी सर्फ नहीं हुआ इनके लिए कदमा लाया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने पैगंबर की शक्ल में जो बेचैनी, जो इतने अरसे से जो चीज उनको बेचैन किए हुई थी, उसका इत्मीनान सुकून का सामान कर दिया। ठीक, तो ये एक बहुत अहम चीज है कि खुदा ने हमें इस चीज की दावत दी कि जो कुछ हकीकत है वो बियॉन्ड द ऑब्वियस है, जाहिर के पीछे, हकीकत जाहिर से मावरा है, और उसका नाम रखा गैर। गैर किस उन्वान से नाम रखा? कि तुम अपने मटेरियल सेंसेस में से किसी चीज के जरिए उन हकायक को दर्ज नहीं कर सकते। फिर अगर मटेरियल सेंसेस के जरिए से दर्ज नहीं कर सकते तो फिर कहां से समझ सकते हैं? अकल के जरिए से समझ सकते हैं कि आखिरत के दुनिया का घर क्या है। हया तो दुनिया इल्ला लहू व लअब या लअबुन व लहू सवाल था गैब के हवाले से, कुछ दो चार बातें कि गैब का जो लफ्ज है ये बताते खुद इस चीज की तरफ इशारा है कि हम उस चीज पर हमें ईमान लाना है या उससे करीब होना है कि जो हमारी नजरों से मावरा है, हकीकत हमारी नजरों से मावरा है। दूसरी बात जो मैं कल कर रहा था आपके सामने, वो ये था कि इंसान के लिए असल उसका तरक्की का सफर है, आगे बढ़ने के लिए उसकी जो राहें हैं, वो ये नहीं है कि इंसान इबादात के नाम पर कुछ अफाल को अंजाम देता है, बल्कि इबादत के नाम पर अंजाम दिया जाने वाला हर अमल एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए جس چیز کی طرف کہ انسان میں صفت بندگی پیدا ہو اور انسان کا حقیقت یعنی خدا سے تعلق اسٹرانگ ہوتا چلا جائے، مضبوط ہوتا چلا جائے. انسان بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھتے بڑھتے عبادات کی حقیقت یعنی بندگی تک پہنچتے ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود حقیقت بندگی ہوتے ہیں، یہ حقیقت عبادت ہوتی ہے. اس کی مثال کل میں نے آپ کے سامنے دی تھی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکہ اور منا کا فرزند ہوں، میں زمزم اور صفا کا فرزند ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور منا اور صفا و مروہ میں جا کے جو عبادت انجام دی جاتی ہے اس کی اصل حقیقت یہ ہے. تو اگر کوئی انسان اس چیز کو سمجھتا ہے، یہ اس چیز کو عبادت سمجھتا ہے کہ انہیں چھوڑ دے اور صفا و مروہ میں دوڑ لگاتا رہے، یا امام حسین کو چھوڑ دے اور کعبے کا طواف کرتا رہے، تو وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ اس نے صرف مجاز کو پایا، حقیقت کو چھوڑ دیا، ظاہر کو پایا، باطل کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک اہم، بہت ہی اہم ترین نقطہ ہے. یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، اور کل جب میں نے گفتگو ختم کی تو کئی سوالات اس اعتبار سے ہمارے سامنے آئے کہ ہم جس قسم کی زندگیاں گزار رہے ہیں ان میں، اور جو باتیں ہم اس حوالے سے سنتے ہیں ان میں عدم مطابقت کا ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے. یعنی ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ جو آئمہ کے لحاظ سے یا انبیاء کے لحاظ سے بہت زیادہ پرتعیش ہیں. ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنے لیے ان تمام وسائل کو رکھا ہے، اس کو جائز سمجھتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کہ جن کے وجہ سے ہماری زندگی کا ایک بڑا وقت صرف ہو جاتا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کے قرآن میں غور کر سکیں، ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے کہ ہم ایسی نماز پڑھ سکیں کہ جس میں خالصتاً ہماری توجہ بدلی جا رہی ہے، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ جب ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھیں تو فریش اٹھیں، کیونکہ ہم رات کو ہی کام کر کر کے اور رشتہ داریاں نبھا نبھا کے اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے اگر بہت کمال کر کے اٹھ بھی جاتے ہیں تو ایک تھکے ذہن کے ساتھ رکھتے ہیں. جبکہ ہمیں معصومی علیہ السلام کی زندگی اس کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں نظر آتی ہے. تو اب جو ایک بات، یعنی یقیناً میں بالکل دو ٹوک کہوں گا، اور اس میں دیکھیں جو گفتگو میں کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے حوالہ کر رہی، بلکہ میں خود بھی اسی زمرے میں شامل ہوں کہ اصول اپنی جگہ پر اٹل ہے. یعنی اگر انسان کو خدا تک پہنچنا ہے، اگر انسان کو مادیت اور ظواہر کے پردوں کو چاک کر کے حقیقت تک پہنچنا ہے، تو اس کا ایک معین رستہ اور اصول ہے. جو انسان ان اصولوں کی پاسداری کرے گا، ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا، اسے وہ مقام مل جائے گا، اور جو ان کو رد کرے گا، ان کو نظر انداز کرے گا، چاہے وہ کوئی سا بھی عذر کیوں نہ پیش کرتا رہے، وہ وہاں تک نہیں پہنچے گا. یہ بات طے ہو گئی. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہم ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہو گئے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے خدا معاف بھی کر دے، لیکن وہ رستے پہ تو رہے ہیں کہ مثال کے طور پر ڈسکشن کے رستے اور یا خدا کے سامنے جس پردے ہٹتے ہیں کش پہ جانا تو پتہ نہیں ہو پاتا. ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، صحیح میں بھی کہتا ہوں خدا معاف کر دے، لیکن اگر آپ ایک نتیجے کو پانا چاہتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے اس کی شرائط کو پورا کرنا پڑے گا. اس بات بارے میں بالکل کلیئر ہو گئی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم ان جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل نہ کریں اور خدا ہمیں نتیجہ دے دے، ایسا نہیں. میں اس بارے میں ہی مثال کے طور پر ایک دو واقعات چیزیں امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ نقطہ اور واضح ہو جائے کہ نہج البلاغہ میں ایک مقام پر آپ یہ فرماتے ہیں کہ क्या तुम्हारा ख्याल है कि खुदा ने अपने पैगंबर को बाइज्जत और गिरामी जाना या नहीं जाना? क्या खुदा की नजर में पैगंबर लायक इज्जत थे या नहीं? अगर थे तो पैगंबर ने जिंदगी इस तरीके से गुजारी कि कभी फाफे हो रहे हैं, कभी पेट पे दो पत्थर बने हुए हैं, कभी घर में खाने को कुछ नहीं है, कभी एक या दो लिबास में गुजारा वक्त कर रहे हैं घर वाले। तो आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया काबिल इज्जत है, दुनिया के आराम और आसाइश और माल दुनिया इज्जत का मियार है, तो फिर तुम्हें इस बात को मानना पड़ेगा कि खुदा ने अपने पैगंबर की अमानत की कि अगर उनकी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में उन्हें इन आराम और आसाइश और माल दुनिया से महरूम रखना तो खुदा ने अपने पैगंबर की अमानत की। और अगर ऐसा नहीं है, वाकई पैगंबर खुदा के नजदीक सबसे ग्रामी कदर शख्सियत है, जिनके बारे में खुदा फरमाता है कि तो फिर तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि इसकी कोई हैसियत नहीं, ये आए या जाए इससे बड़ा की बात। ठीक है, एक ये इस्तेमाल एक वाकया चल रही है। जंग जमन के दौरान जो आपका मुखालिफ लश्कर था वो किस तरफ निकला? इराक की तरफ निकल गया और सबसे पहले उन्होंने जाके क्या किया? बसरे पर होता है, बसरे पर उनका कब्जा था और कब्जा करने के बाद वो कहां पहुंचे? बैतुलमाल पहुंचे। उसके बाद वहां पर उन्होंने जी भर के उससे इस्तफादा भी किया और बल्कि कई अफराद जो थे वो बैतुलमाल में सोने और चांदी के ढेर और उसकी कसरत को देखकर बहुत खुश हुए थे, बड़ा बड़ी कामयाबी मिली। उसके कुछ ही दिनों बाद जब अमीरुल्मोमिनीन की फौज बसरे पहुंची और उनसे वो कब्जा छुड़ा लिया और खुद काबिज हो गए तो आपके सामने भी वो बैतुलमाल का दर खुला गया। वहां पर आपने आपको शायद ये जुमला तो आपने सुना हो लेकिन ये ध्यान में नहीं होगा कि जुमला आपने क्या बचा करना है, या फफरा हो या बैतवा हो और भी गई। जब आपकी नजर उस बैतुलमाल में मौजूद सोने और चांदी के ढेर पर पड़ी है तो आपने कहा ये ढेर के ढेर माल और होता है, अली तुम्हारे इस फरेब में, इस दामे फरेब में फंसने वाला नहीं, तुम्हारे अंदर अली के लिए कोई कशिश नहीं पाई जाएगी। इसी असना में एक मर्द नसरानी बूढ़ा नसरानी मर्द आया, शख्स आया और उसने कहा कि मैं मुकाब भी मांग रहा हूं। और आपको यह बात पता है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो, अगर हुकूमत इस्लामी कायम हो और उस हुकूमत इस्लामी के अंदर एक शख्स भी गदागरी करता हुआ पाया जाए तो जो अमीर हुकूमत इस्लामी है डायरेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हुआ कैसे कि एक शख्स इस कदर मजबूर और मोहताज हो गया कि अपनी इज्जत नफ्स बेचने पर अमादा हो, ये कैसे हो गया? तो आपने उसको भी मान के देखा तो फौरन बुलाया और कहा क्या मसला? उसने कहा कि ये मेरी जिंदगी की सख्तियों की शिकायत की जिसकी वजह से मैं इस अमल में मजबूर हुआ। जो बैतुलमान का वकील मुवक्किल था उस पर जिम्मेदार था, आपने उससे कहा इसको हजार वाहिद जैसा कि हजार सिक्के दे दो। ठीक, उसने पूछा कि यह अमीरुल मोमिनीन सोने के या चांदी के, सोने के या चांदी के कौन से सिक्के थे? आपने जवाब दिया मेरे लिए दोनों पत्थर हैं, जिनसे इसकी जरूरत पूरी होती है वो दे, मेरे लिए दोनों पत्थर हैं। ये जो कंसेप्ट है जाहिर है कि हम क्योंकि कुरान और अहबाब की तालीम से बहरहाल हमारा वो रिश्ता और वो ताल्लुक नहीं कायम हो पाया कि जो होना चाहिए, इस वजह से हम सब के अंदर इस किस्म के मसाइल वजूद रखते हैं कि हम जब अपनी जिंदगियों में आते हैं तो उन चीजों को अहमियत देना शुरू हो जाते हैं कि जिन्हें अहमियत इस कदर नहीं देना चाहिए, कि हमें इस बात का शऊर नहीं है, सिखाया नहीं गया कि कौन सी चीजें जिंदगी में लाइफ अहमियत है और कौन सी काबिल अहमियत नहीं है। کی جو بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر ہم اب یہی اصول ہے اس زندگی پر آ جائے گی اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا. اسی اعتبار سے اگر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں, کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ عبادت جب انسان انجام دیتا ہے تو عبادت کی طرف اسے اپروچ کیسے کرنا چاہیے, کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ایک شوقین صاحب شوق محبت کرنے والا اپنے محبوب کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عبادت کا عمل انجام دیتے وقت اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے کہ جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کے ساتھ وقت گزارتا ہے. یعنی فعل عبادت یہ عمل عبادت کہ جب انسان عبادت کی طرف بڑھے, یعنی عبادت کی طرف بڑھے کا مطلب جیسے وقت اذان آیا یا وقت سحر آیا کہ جب آپ روزے یا نماز کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ایک مشتاقانہ یہ نہیں سوچے کہ وہ وقت سارا دن پہ بھوکا رہنا پڑے یہ والی سوچ نہیں کہ اب جو ہے پھر ایک اور دن بھوک پیاس کا آگے, یا نماز کے وقت یہ نہیں کہ وہ ابھی ہم اتنے تفریحی کام میں اتنا اچھے کسی مشغلے میں تھے اب پھر دیکھو نماز پڑھنی پڑے, ابھی ہم نے 4-6 گھنٹے پہلے تو نماز پڑھی اور دوبارہ پڑھا ہونا پڑا, یہ نہیں. بلکہ مشتاقین کہ جو عبادت کا شوق, اچھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے شوق اور عشق. جب عبادت کی طرف انسان بڑھے تو شاکر یا مشتاق کی حیثیت سے بڑھے, اور جب عبادت کا عمل انجام دے تو عاشق کے طریقے سے انجام دے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس شوق یا محبت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو اپنی محبوب اور مطلوب چیز ملتی نہیں, جب آپ اس سے دور یا جدا ہو جائیں, اور جب محبوب کا وصال ہو جائے محبوب نصیب ہو جائے تو اس وقت جو لمحے اس کے ساتھ گزارے جاتے ہیں وہ عشق بنائے. اس لیے تو مختلف الفاظ ہے روایتوں میں کہ جب انسان عبادت کی طرف بڑھے تو مشتاقین شائق کی طریقے سے بڑھے, اور جب عبادت کا عمل انجام دے تو افضل الناس انسانوں میں افضل کون ہے کہ جو عبادت سے عشق کرتا ہے. اس سے آگے بڑھ کے اس کی قلم نے وضاحت کی کہ یہ ایک عابد کی شان یہ ہونا چاہیے. دوسرا اہم پہلو کہ جس کا تعلق عبادات کی حکمت سے ہے عبادت کی, وہ کیا ہے کہ جب انسان حالت عبادت میں آئے تو غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ عبرت کے ساتھ. غفلت کے ساتھ نہیں یعنی کہ جب محراب عبادت میں کھڑا ہو, جب حالت عبادت میں آئے تو حالت غفلت نہ ہو بلکہ عبرت والی حالت. اچھا عبرت کا لفظ یہاں پہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ عبرت کیا ہے, فاعتبرونا یا اولی الابصار کہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. عبرت کے معنی بیان کرتے ہیں کہ عبرت یعنی عبور از صفات بد بس صفات خوب. عبرت کا تعلق ہے عبور سے, یعنی انسان ایک چیز پر نظر کرے اور اس نظر کرنے کی وجہ سے خرابی کی حدوں کو عبور کر کے اچھائی کی حدوں میں داخل ہو جائے, اسے کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا. یعنی جب ہم کسی جگہ پر گئے قرآن کریم نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ عبرت حاصل کرو, کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ قوم عاد قوم ثمود یا کسی قوم کے آپ نے کھنڈرات آثار دیکھے, تو ان آثار کو دیکھ کر آپ نے عبرت کیسے حاصل کی کہ جن صفات بد کی وجہ سے یہ لوگ تباہ و برباد ہوئے وہ کیا تھیں, ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ان صفات خوب تک ہمیں پہنچنا ہے. اگر یہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ نے عبرت حاصل کی, ورنہ آپ نے کیا کیا صرف تماشا کیا. یعنی باقاعدہ الفاظ ہیں کہ اگر اس نظر سے نہیں دیکھا تو تماشا گر, اور اگر اس نظر سے دیکھا تو صاحب عبرت. عبرت حاصل کرنے کے لیے بصیرت چاہیے, कि आप एक शय को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, इसका मुशाहिदा करें और उसके बाद उसमें जो खराबी उसकी तबाही की वजह बनी है उससे समझ जाएं कि इससे इज्तनाब करके दूसरी हालतें खूबी में हमें पहुंचना है और जाना है। ये नजर इबरत ऐसे अफराद के लिए खुदा ने फरमाया सूरह आग में कि वह जाना लहू नूर यमशी बिलनास, कि इंसानों में से कुछ अफराद वो हैं कि जिनके लिए हमने नूर करार दिया है कि जिसको लेकर वो इंसानों में चलते रहते हैं। कुछ अफराद वो हैं कि जिनकी नजर इबरत है और जिनका वजूद नूर है। और सही मानों में अगर आप तबलीग की बात करते हैं, अगर आप दीन के फैलाने की बात करते हैं, तो वो ऐसे ही अफराद के जरिए से दीन फैलाता है। इन्हें दीन कभी भी पीर और पाल के जरिए से नहीं फैलता सकता, बल्कि दीन हमेशा उन शख्सियात के जरिए से फैलता है कि जो नूरानी होती है। नूरानी शख्सियात के जरिए से दीन फैलता है। तो कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिनके लिए खुदा ने कहा कि वह जाना लहू नूर यमशी बिही फिन्नास, ऐसे अफराद की नजर इबरत होती है, उनकी खामोशी फिक्र होती है और उनकी गोयाई हिकमत होती है। ऐसे अफराद के जो खुद नूरानी शख्सियत रखते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं कि वह मिन हूं मन यमशी आला बतनेही, अगर चलिए हैवानात का जिक्र है लेकिन इस आयत के हवाले से ये कहते हैं कि कुछ जमीन पर चलने वाले ऐसे भी हैं कि जो अपने पेट के बल चलते हैं, यानी कि इस जिंदगी में उनकी सारी की सारी कोशिश किस हवाले से होती है, पेट के बल। वमिन हुम मन यमशी अला बतनेही, अपने बतन के ऊपर चलते हैं। नूरानी शख्सियत के हवाले से आपने खुद इस दौर में भी मुशाहिदा किया कि कुछ अफराद ऐसे फलाने बतौर नेमत हमें अता फरमाए कि जिनकी वजह से कसरत से खिलकत गुमराही से हिदायत की तरफ है। इसकी एक मिसाल भी है, कुम में अगर आपने ज्यारत की हो, अगर चलिए आप कुम का जो कब्रस्तान है, जो शैफान कुम कहलाते हैं, वो बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन दो तीन काबिल जिक्र कुबूर वहां पर मौजूद है। एक तो आयतुल्लाह जवाद मलकी तब्रेजी की कब्र वहां पर है और एक जकरिया बिन आदम की कब्र। जकरिया बिन आदम सातवें और आठवें इमाम के असाब से थे और उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बाद खुरासान में तशरीफ रखते थे, उनको खत लिखा कि अब कुम के अंदर जितने भी अच्छे अफराद अच्छे लोग हैं फौत हो चुके हैं और मेरा दिल अब यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है, तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं यहाँ से हिजरत कर जाऊँ। तो इमाम ने फरमाया कि हरगिज नहीं, तुम कुम में रहो क्योंकि तुम्हारा वजूद अहले कुम के लिए बरकत है और खुदाए सुभान तुम्हारे जरिए से अहले कुम से अजाब को बरतरफ करता है, ऐसे ही कि जैसे मेरे वालिद बुजुर्गवार की कब्र को अजाब से रुकावट बनाया हुआ है अहले बगदाद के लिए। जैसे हमें नहीं पता कि हम किस किस के तुफैल में जिंदा है, कि वो कौन सी ऐसी नूरानी शख्सियतें हैं, कौन से ऐसे नूरानी वजूद हैं, कि हम खुद अपने को बहुत क्रेडिट दे रहे होते हैं बहुत सारी चीजों, लेकिन इससे यही पता चलता है कि कुछ ऐसी नूरानी हस्तियां हैं कि जिनकी वजह से पूरी बस्ती पूरा शहर अजाब खुदा से हम नौमान करते हैं कि तुम हरगिज यहां से नहीं जाना, तो इस शहर में खराबी तो आ गई है लेकिन तुम्हारी वजह से बचा रहा है, अगर तुम भी यहां से रुखसत हो गए तो फिर अजाब खुदा से कोई रुकावट नहीं आएगी, जैसा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार की कब्र अजाब से रुकावट है किसके लिए, अहले बगदाद के लिए। तो पहली बात कि इबादत की तरफ इंसान बढ़े शौक और इबादत का अमल अंजाम के इश्क के साथ, इबादत के लिए जब महराब इबादत में आए तो गफलत को तर्क करके नजर इबरत के साथ, और जो इबादत का हदफ और भी चीजें इंशाल्लाह मैं कल खिदमत में बयान करूंगा, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि इबादत का हदफ क्या है, इबादत अंजाम देकर आप कहां पहुंचना चाहते हैं। اور اس حدف کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے مرحلہ یقین، یعنی انسان عبادات انجام دے تاکہ کہاں تک پہنچے، مرحلہ یقین. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَحْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ بندگی کر، حقیقت کر، یہاں تک کہ یقین کی حالت تک پہنچ جائے. آج تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ یقین کے حوالے سے دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. یقین بنیادی طور پر ہے کیا چیز، اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، تعریف کیسے کریں گے یقین؟ کیا یقین جسے ہم کہتے ہیں بلیف اور فیتھ ایک چیز ہے، ان میں فرق ہے، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے، کیا چیز؟ یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے وجود سے اضطراب، تردد، شک، بے چینی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں. اگر انسان سکون، اطمینان، امن کی حالت میں آ جائے تو یہ حالت اس کے لیے حالت یقین ہوتی ہے. ٹھیک، اس چیز کو آئمہ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے اگر امام صادق علیہ السلام کو کون سا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہج البلاغہ میں آپ نے پڑھا ہوگا ایک آخر میں کلمات قصار میں، شاید کلمہ نمبر 30 ہے، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے چار ستون ہیں، صبر، یقین، عدل، جہاد. یعنی انسان کے ایمان کی عمارت چار ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، فور پلرز. پہلا ان میں صبر ہے، دوسرا یقین ہے، تیسرا عدل ہے، چوتھا جہاد. اور پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کے چار چار شعبے میں رکھا ہوا، یعنی یہ چار ستون ہیں اور ہر ایک کے چار چار شعبے. یقین کے چار شعبے آپ بیان فرماتے ہیں کہ یقین تغفرۃ الفتنۃ وتأول الحکمۃ وموعظۃ العبرۃ وسنۃ الاولین. یقین کے چار شعبے کیا ہیں؟ کہ انسان ہوشیار، باریک بین، زیرک، نظر رکھنے والا ہے. یعنی یقین کے مرحلے تک کون پہنچتا ہے؟ کہ جس کی نظر، جس کی بصیرت باریک بین، زیرک اور ہوشیار ہے. ٹھیک ہے، یعنی باریکیوں کو دیکھنے کے قابل ہو اور گہرائیوں کو پہچاننے اور ان میں اترنے کے قابل ہو. الحکمہ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جس کی نظر ہوشیار ہوتی ہے، زیرک ہوتی ہے، اس کے سامنے حکمتیں روشن ہو جاتی ہیں. حکمتیں یعنی عقل کی باتیں، وہ چیزیں جو صحیح اور غلط کو الگ کرتی ہیں، میزان حق و باطل اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. اور جس کے سامنے میزان حق و باطل واضح ہوتی ہے، وہی ایونٹس کو، چیزوں کو، واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے. عبرت اور اس سے موعظہ حاصل کرنے کے لائق کون انسان بنتا ہے؟ کہ جو اس کی نظر باریک بین ہو اور جو حکمت کے حقائق کو پا چکا ہو، ان تک پہنچ چکا ہو. اور جس نے عبرت سے موعظہ حاصل کرنے کی صلاحیت کو حاصل کر لیا، وہ گویا ایسا ہی ہے کہ جیسے اولین میں رہ لیا. یعنی کہ جس نے ماضی کے گزرے ہوئے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار دی، سنت الاولین کو پالی، اور جس نے انسانوں کے تمام گزرے ہوئے زمانے کے انسانوں کے طور طریقوں کو سمجھ لیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس نے ان کو فائدہ پہنچایا اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس نے ان کو نقصان پہنچایا، وہ حالت یقین تک پہنچ گیا. یقین کے مراحل کیا ہیں؟ یقین انسان کو کس طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ کہ جیسے جب ہم نے ایک چیز کو دیکھا کہ ایک انسان یہ غلط کام کر رہا ہے اور کس انجام کو پہنچ رہا ہے، اب یہ چیز ہمارے لیے باعث سے یقین ہے کہ اس عمل میں خرابی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ سے ایک بات یہ کہی جائے کہ فلاں کام آپ نہ کریں، فلاں چیز نہ کھائیں پیئیں، اس سے آپ کی صحت خراب ہو جائے. جب آپ نے صرف یہ بات سنی ہے، اس وقت تک آپ کو ایک گمان ہے، कि उस चीज के खाने या पीने से सेहत खराब हो भी सकती है, हो सकता है कि वो औरत हो सकता है, सही बात में कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने अपनी नजरों के सामने देखा कि एक शख्स ने उस चीज को खाया और उसकी तबीयत बिगड़ गई, तो अब आपको क्या हुआ, आपको इस बात पर यकीन कर रहा है। तो अमीर उल सलाम किस चीज को यकीन की बुनियाद करार दे रहे हैं कि इंसान दूसरे लोगों की सुन्नतों को, दूसरे अफवाह या अफराद की सुन्नतों को बनजरे इबरत देखे और उनसे इस बात को समझ ले कि कौन सी चीज फायदेमंद थी और कौन सी चीज नुकसान दे थी। ये अमल उसके लिए यकीन करिए। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान करीम में इतने सारे कसस, इतने सारे कस्से क्यों बयान किए, इतने सारे वाकया क्यों बयान किए, ताकि हम इस बात का यकीन पैदा कर लें। अगर हम कुरान पर ईमान रखते हैं, इस बात का यकीन पैदा कर लें कि वो कौन सी चीजें हैं कि जो इंसानों के लिए या अफवाह के लिए फायदेमंद है, जिससे उनकी इंफरादी जिंदगी बेहतर हो सकती है या इज्तिमाई जिंदगी बेहतर हो सकती है, या इंफरादी जिंदगी खराब हो सकती है या कौमी जिंदगी में तबाही आ सकती है, उसके यकीन तक पहुंच जाए। तो अब अगर मैं चीजों का खुलासा करूं, तो हम इबादत के अगर असली मकसद और उसके गर्ज़ो गायत को बयान करें, तो इबादत का मकसद क्या है कि इंसान बंदगी के जहां तक पहुंचे। बंदगी के जहां तक इंसान उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक इलाही जितने भी शायर हैं, इलाही जितनी चीजें हैं, उस पर इंसान को यकीन ना हासिल हो जाए। यकीन हासिल होने का मतलब यह है कि इंसान खुदाई चीजों की तरफ से, खुदाई चीजें कौन कौन सी हैं, खुद तौहीद है, रसूल हैं, किताबें हैं, यानी कि जो कुछ सहीफों में हमारे सामने आया, जो कुछ रसूल और उनकी शख्सियतों के जरिए से सामने आया, और जो कुछ खुदा पर ईमान के हवाले से हमारे सामने आया, इन एतबारात से इंसान मुतमईन हो जाए, हर किस्म के शक, रैब, तरद्दुद से निजात हासिल कर ले और अपने कल्ब में सुकून और इत्मीनान पाए। अगर इस मरहले तक इंसान पहुंच जाता है तो यह हालत अमन है, यह हालत यकीन है। इस चीज तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक कुछ मुकदमात को तय न कर लिया जाए। उन मुकदमात में सबसे अहम चीज क्या है, गफलत से आजाद होना और नजर का इबरत आमोज होना। उन अहम मुकदमात में क्या चीज है कि इंसान दीन की तरफ मोहब्बत के साथ बढ़े, न कि लालच और खौफ के साथ। उनमें अहम तरीन चीज क्या है कि इंसान जब इबादत को अंजाम दे तो इश्क की हालत में अंजाम दे, न कि बेपरवाही की हालत। इसी से मिलती जुलती दो चीजें और आपकी खिदमत में अर्ज करके इसको मुकम्मल कर लू इस बात को कि यहां पर दो अहम बातें और कनेक्ट हो जाती हैं इन्हीं मुकदमाओं से। एक का ताल्लुक है तहारत से और एक का ताल्लुक है नीयत से। ठीक, यानी इबादत उस वक्त तक अंजाम नहीं दी जा सकती जब तक आप नीयत ना करें और जब तक आप बातहारत ना हो। ठीक है, यानी इबादत के कुछ मुकदमात ऐसे हैं कि जो जाहिरी हैं, कुछ बातिनी हैं, कुछ मानवी हैं। तो इबादत के अंजाम दही के लिए सबसे पहली चीज क्या है, नीयत का। नीयत आपको किस हालत से बाहर जाती है बताइए, गफलत से बाहर जाती। जब आप नीयत करते हैं तो नीयत करने का मतलब यह है कि आप उस अमल की जानिब मुतवज्जे हैं जो आप अंजाम देने जा रहे हैं। तो वही मैंने आपसे अर्ज किया कि मुकदमा क्या है कि इंसान इबादत हालत अफलत में अंजाम ना दे। इस हवाले से कुरान करीम की आयत बड़ी अजीब है सूरह अनफाल की कि वला तक्रबु सलात व अंतुम सुकारा, के सलात के करीब ही ना जाओ जब तुम सुकर की, नशे की हालत में हो। और इसके बाद का टुकड़ा क्या है कि जब तुम वो समझने लगो जो कह रहे हो। इससे आगे वाला टुकड़ा ये, यानी यही कहा है जब तुम नशे की हालत से बाहर आए, बल्कि जब तुम वो समझने लगो जो कह रहे हो तो फिर मना छोड़ो। इसका क्या मतलब है कि अगर इंसान इस हालत में नमाज अदा करता है, अगर इंसान इस हालत में इबादत करता है कि जो कुछ कह रहा है उसको समझ नहीं रहा, तो हकीकतन नशे लिया यानी उसकी हालत हालत शुक्र है, क्योंकि खुद कुरान हालत सुकारा को ऐसे डिफाइन कर रहा है कि जब वो जो कुछ कह रहे हैं उसको समझ लाना शुरू कर, कि इंसान नशे की हालत में जाहिरी एतबार से कैसा होता है कि जो कुछ और फॉल जबान से निकल रहा था उसको नहीं पता, और अक्सर अवकात जब उस हालत से बाहर आता है तो फिर शर्मिंदा होता है कि मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। तो नियत, यानी इबादत का जुज नियत, नियत किस मकसद के लिए कि इंसान को गफलत की हालत से बाहर आए। हम अभी तक इस दुनिया के अंदर मशगूल है, इस दुनिया के कामों में मशगूल है, तो क्या है हालत गफलत में, खुदा के और हमारे दरमियान पर्दे और हिजाब पड़े हुए हैं। तो अब हमने नियत की, और नियत कहां से शुरू होती है, मिसाल के तौर पर नमाज, नमाज की नियत नमाज से नहीं बल्कि वजू से शुरू होती है, कि अगर आप वजू ना करें, वजू की नियत ना करें तो आगे नमाज नहीं पढ़ सकते। वजू के अंदर क्या चीज है, वजू में जाहिरी तौर से वजू या वसूल में तहारत। अच्छा, तहारत आप क्या समझते हैं कि तहारत से मुराद हमारा साफ होना, पाक होना, कि हमने अपना चेहरा धो लिया, हाथ धो लिए, या वसूल में पूरा बदन धो लिया, क्या इस जाहिरी एतबार से चेहरे या बदन को धोना इसका नाम तहारत है? अगर इसका नाम तहारत होता तो फिर तयम्मुम से तहारत कैसे होती? अगर हम सिर्फ वजू या वसूल को समझते हैं कि इसमें हमारे, क्योंकि पानी के जरिए से हम कुछ धो लेते हैं अपने चेहरे को या अपने आज़ा और जवारह को, तो शायद तहारत का मतलब ये हो। लेकिन जब खुदा ये कहता है कि तुम्हें वजू के लिए पानी दस्तियाब ना हो तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लिया करो, तो मिट्टी मुंह पर और चेहरे और हाथों पर भरने से कोई इंसान पाक साफ होता है, जिसे हम सफाई कहते हैं, क्या इंसान वैसा होता है? तो इसका मतलब यह है कि खुदा की नजरों में जिस चीज का नाम तहारत है वो कुछ और है। यानी कि नमाज के लिए या इबादत के लिए जो शराइत बयान हुई कि जिनमें अव्वलीन शर्त नियत और तहारत, तो नियत मैंने आपकी खिदमत में उसके कर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाऊं, कि नियत यानी गफलत की हालत से बाहर आना या लाना, और तहारत यानी पाकीजगी का हासिल करना। भी पाकीजगी क्या है कि आपके मैं चेहरा धो के हाथ धो के आ गया उस से जब वसूल करके आ गया, लेकिन तयम्मुम में क्या करना, आपने मिट्टी मल लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि तहारत इस चीज का नाम नहीं, बल्कि तहारत और इमाम मासूम के जरिए से कि तहारत इबादत में अपने आप को गैरस खुदा से पाक करने का नाम, इन्हें इबादत में जिस तहारत को खुदा ने चाहा है कि जब मेरे पास आओ तो मेरे गैर से पाक को कराओ, ये है असली तहारत। और इसी चीज को आयमा ताहिर अलैहिस्सलाम ने अक्सर जगहों पर कहा है कि वो नजर या वो फिक्र कि जो खुदा के गैर के साथ मशगूल रहती है, वो नजर या वो फिक्र के जो अपनी जिंदगी में खुदा से हटकर दूसरों की अहमियत और अर्जिश का पैर होती है, वो नमाज के वक्त